नमस्कार भारत, 18 अप्रैल दिन मंगलवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। मिसाइल कार्यक्रम को लेकर घिरे उत्तर कोरिया ने दी अमेरिका को चेतावनी, कहा अगर सैनिक कार्रवाई हुई तो परमाणु हमले से जवाब देगा उत्तर कोरिया। तमिलनाडु में राजनीतिक सरगर्मी फिर हुई तेज, अन्ना द्रमुक के दो गुटों के बीच एकता की कोशिश। कश्मीर में एक युवक को सेना की जीप से बांधने के वीडियो पर ट्वीट को लेकर निशाने पर आए जनरल पनाग।
जिस तरह से सेना अभी तक काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में काम करती आई है, ये बिल्कुल उसके विपरीत है और सेना की इमेज के ऊपर मैं कहूँगा कि एक धब्बा है।
और हैदराबाद के अनोखे रिकॉर्डधारी भाई बहन पर होगी एक विशेष रिपोर्ट, होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रभात पांडे से। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव और बढ़ गया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका अगर उसके खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई करता है तो वो भी उसका जवाब परमाणु हमले से देगा। इस बीच अमेरिका ने भी कहा है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को फौरन रोक दे, वरना अमेरिका के सामने सभी विकल्प खुले हैं। तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेचप तैयब एर्दोआन को रविवार को हुए जनमत संग्रह में जीत की बधाई दी है। अमेरिका की ओर से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोआन को जनमत संग्रह में मिली ये जीत उन्हें इतनी ताकत देगी जितनी देश के आधुनिक इतिहास में किसी भी नेता के पास नहीं थी। हालांकि इस जनमत संग्रह के परिणाम के खिलाफ तुर्की में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। इस्तांबुल में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने कहा,
birçok usulsüzlük, birçok hukuki olmayan durum olduğunu düşünüyoruz. Birçok haber geldi seçim günü de.
वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। हम जनमत संग्रह के परिणाम को नहीं मानते क्योंकि हमें पता है एर्दोआन की इसमें हार हुई है। तुर्की में संविधान के मुद्दे पर रविवार को जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें एर्दोआन को बहुमत से जीत मिली। उसके बाद उन्हें आदेश जारी करने, ऊंची अदालतों में जजों की नियुक्तियों और संसद को भंग करने का अधिकार भी मिल गया है। फेसबुक ने कहा है कि हिंसात्मक और दूसरी आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो के संबंध में वो अपनी नीति की समीक्षा करेगा। अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में एक वृद्ध नागरिक की हत्या को फेसबुक पर लाइव दिखाने के मामले के सामने आने के बाद फेसबुक ने ये बयान जारी किया है। इस मामले में संदिग्ध स्टीव स्टीफंस नाम के शख्स ने एक दूसरे वीडियो में 13 अन्य लोगों को मारने की बात भी कही है। ये संदिग्ध फरार है और पुलिस अमेरिका के 5 राज्यों में इसकी तलाश कर रही है। श्रीलंका में अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को कोलंबो में विशाल मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या 28 हो गई है और 30 लोग अब भी लापता हैं। एक शख्स ने बीबीसी को बताया कि वो अब भी अपनी बेटी की तलाश कर रहा है। इस शख्स की पत्नी और बेटे की पहले ही मलबे में दबने से मौत हो गई। राहत कार्यों में लगे ब्रिगेडियर रोशन सेनेवर्तने ने बीबीसी को बताया,
In some areas we have to dig up to 20 feet. In some areas 20, some areas it might be little further.
हमें कई जगह पर 28 फीट तक गड्ढा खोदना पड़ा। लोगों से मिली जानकारी के हिसाब से हम राहत कार्यों में लगे हैं और लापता लोगों की खोज के लिए ये काम आगे भी जारी रहेगा। कोलंबो में हुए हादसे के बाद राहत के काम में लगे एक अधिकारी के शब्द आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूसी जांच एजेंसी एफएसबी ने कहा है कि उसने सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो स्टेशन में हुए धमाके के सिलसिले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। समझा जाता है कि ये शख्स धमाके का षड्यंत्रकर्ता हो सकता है। ये धमाका इसी महीने की शुरुआत में हुआ था। जांच एजेंसी के मुताबिक जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अबरोर असीमोव है और वो 27 साल का है। इस सिलसिले में इससे पहले गिरफ्तार 8 लोगों की तरह ये संदिग्ध भी मध्य एशिया का है। एजेंसी के मुताबिक असीमोव ने हमले के लिए इसमें शामिल आत्मघाती हमलावर को प्रशिक्षित किया था। इस धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 100 अन्य घायल हो गए थे। सार्वजनिक विमान क्षेत्र की कंपनी एयर इंडिया ने हंगामा मचाकर उड़ान में देरी करवाने वाले यात्रियों को लेकर नए नियम का प्रस्ताव दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऐसे यात्रियों पर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बीबीसी समाचार।
आ आज है तारीख 18 अप्रैल दिन मंगलवार। नमस्कार, भारत में अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ उसकी तनातनी बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद उत्तर कोरिया ने कहा है कि वो अपने मिसाइल कार्यक्रम में जरा भी ढील नहीं देगा। बीबीसी के साथ एक बातचीत में उत्तर कोरिया के विदेश उपमंत्री ने कहा कि अमेरिका अगर उन्हें उकसाएगा तो वे भी युद्ध के लिए तैयार हैं और परमाणु हमले के जरिए इसका जवाब देंगे। पूरा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। बीबीसी से खास बातचीत में उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री हैन सोंग युल ने कहा कि अमरीका अगर हमें उकसाएगा तो हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बेपरवाह उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि वो मिसाइल परीक्षण न सिर्फ जारी रखेंगे बल्कि ये परीक्षण जल्दी जल्दी करेंगे। हैन सोंग युल ने कहा, अगर अमरीका सावधान नहीं रहा और हमारे खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की भूल कर बैठा तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले। हम पहले दिन से ही युद्ध छेड़ देंगे। हमारे परमाणु हथियार हमें अमरीका के खतरे से बचाएंगे। हम अब हर सप्ताह मिसाइल टेस्ट करेंगे, हर महीने टेस्ट करेंगे और हर साल टेस्ट करेंगे। उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री के शब्द। वहीं अमेरिका भी इस मसले पर आक्रामक अंदाज में नजर आ रहा है। अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम से बाज आए वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सीरिया में हुए अमेरिकी हमले और अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के ठिकाने पर गिराए गए विशाल अमेरिकी बम का जिक्र किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक पेंस ने कहा,
Since 1992, the United States and our allies have stood together for a denuclearized Korean Peninsula.
1992 से अमेरिका और सहयोगी देश कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार विहीन बनाने के लिए संकल्पित हैं। हम ये लक्ष्य शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। पिछले दो हफ्ते में सीरिया और अफगानिस्तान में कार्रवाई के जरिए हमारे नए राष्ट्रपति ने दिखा दिया कि अमरीका क्या कर सकता है। उत्तर कोरिया के लिए बेहतर होगा कि वो अमेरिका की ताकत और संयम की परीक्षा ना ले। ये थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के शब्द। उत्तर कोरिया ने हाल के सालों में अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम में तेजी दिखाई है, जिसका अमेरिका ये कहकर विरोध करता रहा है कि इससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ेगा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
भारत प्रशासित कश्मीर में कथित तौर पर मानव ढाल बनाकर सेना की जीप से बंधे युवक के वीडियो को लेकर बयानबाजी जारी है। सेना इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस बीच रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग ने इस मामले पर ट्वीट किया तो लोगों ने उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। ट्विटर पर उनकी ट्रोलिंग हुई और गायक अभिजीत ने तो पाकिस्तान भेजने तक की बात कह डाली। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग मशहूर अभिनेत्री गुल पनाग के पिता हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि एक पत्थरबाज को मानव ढाल बनाने की ये तस्वीर हमेशा याद आती रहेगी। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल के साथ बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि ये तस्वीर सेना की छवि के लिए एक धब्बा है।
अभी तक ऐसा करने के लिए सर्कमस्टांसेस क्या थे और उससे पहले क्या हुआ, इसके बारे में कोई मतलब साफ स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आई है। मेरे हिसाब से हमारी सेना जो है हमेशा जिनेवा कन्वेंशंस और सेना के जो रूल्स रेगुलेशंस और सेना की जो लॉ है उसके तहत काम करती है। एक सिविलियन आदमी को अपनी गाड़ी के आगे होस्टेज बनाकर बांधना सरासर गलत है और ये हमारे रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है। और जिस तरह से सेना अभी तक काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में काम करती आई है ये बिल्कुल उसके विपरीत है और सेना की इमेज के ऊपर मैं कहूंगा कि एक धब्बा है।
जी, आपने ट्वीट भी किया था जिसमें आपने कहा था कि ये तस्वीर जो है हमें कई आने वाले समय तक जो है याद रहेगी।
ये बिल्कुल सही मैंने यही कहा है, क्योंकि जब से हमें आजादी मिली है 1947 के बाद ऐसा कोई हादसा मेरे सामने नहीं आया जिसमें कि इतने एविडेंस के साथ ऐसा कोई वाकया जो है वो वीडियो के जरिए पेश किया गया हो। हाँ, पहले भी एलिगेशन थे कि ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन उसमें सेना का एक वर्जन होता था और दूसरे लोगों का एक वर्जन होता था। ऐसा कभी कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं आया था कि ऐसा हुआ है, लेकिन ये वीडियो दर्शाता है, चाहे कोई भी उसकी वजह हो, चाहे कोई भी उसका कारण हो कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन एक सिविलियन आदमी को ह्यूमन शील्ड बनाकर गाड़ी को बांधना सरासर फौज के सिद्धांतों के खिलाफ है।
और इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर आपको काफी कुछ निशाना बनाया गया। आप इतने वरिष्ठ सेनाधिकारी रहे हैं, एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, जिस तरह की भाषा ट्विटर पर इस्तेमाल की जाती है।
देखिए, जो ट्विटर एक जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर तो हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन डिस्कशन है या वार्तालाप है वो एक जेंटलमैनली तरीके से किया जाए और दस्तूरों के अंदर किया जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन काफी अरसे से देखने में आया है कि जब हम कोई बात ऐसी बोलते हैं जो कि एक लोग भावुक होकर या उनके जो विचार हैं उनके ये विपरीत है तो भावुक होकर मतलब गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं और हेट ट्वीट्स देते हैं। लेकिन मैं पिछले 8-9 साल से ट्विटर पर हूँ और मैं हमेशा अपने ट्वीट पर कायम रहता हूँ।
कश्मीर में हम देख रहे हैं कि सेना और पत्थरबाज हैं, उनके बीच काफी अब तनाव बढ़ गया। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को?
हमेशा एक काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर दो पहलू होते हैं। एक होता है कि जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जो कि टेरर के खिलाफ की जाती है, दूसरी है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। असल में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सबसे ऊपर होती है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी उसके तहत ही बनाई जाती है। मेरे हिसाब से 2008 में या कहूंगा 2010 तक काफी हद तक जिसे कहूंगा कि हमने जो हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी कामयाब रही और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी काफी हद तक कामयाब थी। लेकिन उसके बाद जो है जो परसेप्शन बैटल है उसमें टेररिस्ट मैं कहूंगा कि आगे निकल गए हैं और इस वक्त ये हालात हैं कि जो मास एजिटेशन हम देख रहे हैं वो जाहिर करती हैं कि जो पॉलिटिकल बैटल जो है हम हार रहे हैं क्योंकि हमने इसमें पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं लिया जिस हद तक हमें लेना चाहिए था।
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग से बात कर रही थी हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल। और अब चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जयललिता की मौत के बाद से ही चल रही राजनीतिक सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब दो फाड़ हो चुकी पार्टी को एकजुट करने की कोशिशें शुरू हुई हैं और चर्चा ये है कि जल्द ही इस पर कुछ फैसला हो सकता है। मैंने कुछ देर पहले बेंगलोर फोन कर अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से इस बारे में और जानकारी मांगी।
शाम को 25 मिनिस्टर एक इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर तंगमणि के घर पे मिले और वहाँ बहुत देर तक बातचीत चली। वित्त मंत्री जयकुमार उसके बाद पत्रकारों से बात की और कहा कि वो पन्नीरसेल्वम का एक प्रपोजल था जिसमें ये था कि हम दोनों शशिकला और दिनकरन को छोड़कर दोनों गुटों जो पन्नीरसेल्वम का गुट है और जो पलनी स्वामी का जो गुट है दोनों मिलकर अन्ना DMK को फिर से जोर लगाएं। डी जयकुमार का कहना था कि पार्टी का इस मीटिंग का मकसद यही था कि किस तरह वो हरा जो पत्तों वाला चिन्ह है उसको वापस अन्ना DMK का बनाएं, क्योंकि जब दोनों गुटों में झगड़ा हुआ था चुनाव आयोग ने वो दोनों हरा पत्तों का चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। तो उनका ये भी कहना था कि वो पन्नीरसेल्वम का जो प्रपोजल है मर्जर के बारे में उसको वो मंजूर करते हैं और उसके बारे में पलनी स्वामी और पन्नीरसेल्वम दोनों मिलकर बात कर सकते हैं।
इमरान साहब, ये बताइए कि क्या दिनाकरन और शशिकला के को माइनस करके क्या AIADMK में यूनिटी बन सकती है?
अभी का जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि हो सकता है, शायद मुमकिन है, क्योंकि जब से दिनकरन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बने हैं अन्ना DMK के और शशिकला जेल में चली गई आय से अधिक संपत्ति के मामले में, उस समय से केंद्र सरकार से इतना दबाव आ रहा है। पहले तो जो पुराना एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक केस था दिनकरन के खिलाफ, जो जांच चल रही थी उसको रोक दी गई थी, बीच में रुक गई थी, तो उसके बाद अभी फिर से वो शुरू हुआ है और उनको ED के तरफ से समन्स भी दिए गए हैं। उसके बाद इनकम टैक्स का रेड होता है RK नगर के चुनाव में, जहां वो खुद जयललिता की जो सीट थी RK नगर वहां खुद दिनकरन कैंडिडेट बन गए थे, और उसके बाद अभी एक नया केस आ गया।
तमिलनाडु में फिर उठी राजनीति सरगर्मी। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां गुना जिले की एक पंचायत ने अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। पंचायत ने एक पिता को उसकी 5 साल की लड़की की शादी 8 साल के लड़के से करने को कहा है। बच्ची को ये सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि उसके पिता पर आरोप है कि उसने एक बछड़े को पत्थर मारा था जिससे उसकी मौत हो गई थी। भोपाल से सुरेह नियाजी की रिपोर्ट।
यह घटना मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन ब्लॉक के तारपुर गांव की है। 3 साल पहले जगदीश बंजारा ने उनके खेत में चर रहे बछड़े को पत्थर मार दिया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले के बाद जगदीश बंजारा के परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद पंचायत ने जगदीश से गंगा में नहाने और गाँव वालों को खाना खिलाने का भी फरमान सुनाया, लेकिन उसके बावजूद पंचायत को यह महसूस होने लगा कि उस हादसे के बाद गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जगदीश बंजारा की 5 साल की बेटी की शादी 8 साल के लड़के के साथ करने का आदेश दिया। इसकी शिकायत जगदीश की पत्नी ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से की और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। गुना के अपर कलेक्टर नियाज अहमद खान ने बताया,
एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले दिन से बहुत सख्त था और जैसे महिला ने हमको बताया था करके डीएम के पास, हम लोगों ने विदिन एक वर्ष के अंदर ही पूरी तहसीलदार, थाना प्रभारी और महिला विकास के अधिकारी भेजा था, लेकिन चूंकि इसमें गारंटी और हो और भविष्य में बच्ची प्रताड़ित ना हो के लिए हम लोग लक्षित शादी विदिशा में कर रहे थे जटेरी में, तो लड़के के बाप को और लड़के के बाप को लाकर हमने बॉन्ड ओवर कर दिया है 20,000 रुपए में। इसके अलावा 2 व्यक्ति और थे जो उपसा रहे थे शादी के लिए, जिनको बॉन्ड ओवर कर दिए 6 माह के लिए। अगर इस तरह की घटना करते तो फिर जेल भेजा जाएगा, इन लोगों को बॉन्ड ओवर की अगर कंडीशन तोड़ते हैं तो उनको जेल पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा पूरे गांव को वार्निंग दी गई है कि अगर भविष्य में इस तरह की घटना प्रवृत्ति होती है तो पूरे गांव वालों को जेल भेजा जाएगा।
प्रशासन ने इस मामले में पूरी तरह से नजर बनाकर रखी है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने नहीं माना तो पूरे गांव पर मामला दर्ज करा दिया जाएगा। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
और अब चर्चा उत्तर प्रदेश की, जहां फिरोजाबाद में एक महिला की हत्या सुर्खियां बटोर रही है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक शौचालय की मांग को लेकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस इन आरोपों से इनकार करती है। फिरोजाबाद से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद शहर में घनी आबादी वाला कस्बे नुमा मोहल्ला है अजमेरी गेट। 3 दिन पहले यहाँ मामूली सी बात पर एक बड़ी वारदात हो चुकी है और आसपास के घरों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बस्ती के ज्यादातर लोगों के पास एक या छोटे छोटे 2 कमरों के बिना प्लास्टर किए हुए घर हैं। एक घर कासिम का भी है जहाँ ताला लटका हुआ है। शुक्रवार को कासिम ने अपनी ही पत्नी नाजरीन की गर्दन रेत कर हत्या कर दी थी। पड़ोसी उषा अभी भी सहमी हुई हैं।
सुबह से लड़ाई होती रही, हमें तो मालूम नहीं। अब जो कहते हैं घर पे कोई पुलिस लेकर पहुंची है, हमें जो मालूम ना कैसे पहुंची। अब जी इनकी मियाँ बीवी ने लड़ाई होती रही और हमें भैया कुछ मालूम नहीं, तुम्हें सही नहीं बताया।
अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इनके यहाँ वो नहीं था, टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था, ऐसा भी है?
नहीं, खत्ती बनी है, कच्ची है।
अच्छा, आपके यहाँ है बना है?
हमारे यहाँ भैया कुछ भी नहीं है, बाहर जाते हैं।
जो सरकारी वाला आता है वो नहीं बना आपके यहाँ?
भरे आए थे पर आया कुछ नहीं है हमारे पास।
अभी ही रहते हो?
मैं पीछे ही रहता हूँ सर जी।
अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ था कुछ आप बताएंगे, आपको कुछ पता है?
इसका सर जी हुआ क्या था, वही शौचालय का चक्कर, घर मकान गरीबी का, आपस में बीवी की टेंशन चल रही थी सर जी, पर इसी का ही मैटर था और कोई बात नहीं। अब वो थाने भी गई थी मेरे ख्याल से, वो अपने ससुर के उस कहने के लिए कि हमारा बरंडा बनवाए, लेटरिन बनवाए हमारे लिए।
लेकिन पुलिस का कहना है कि ये घरेलू विवाद था और दहेज हत्या में कासिम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिरोजाबाद के SPCT संजीव वाजपेयी कहते हैं,
ना बिल्कुल नहीं है, FIR में भी नहीं है ये बात। पता नहीं कहाँ से ये बात निकाली है, कुछ लोगों ने एक दो जगह पेपर में भी लिख दिया है, लेकिन वो कारण सही नहीं है। घर का झगड़ा, दहेज, ये सब है।
मौके पर पहुंचे स्थानीय पत्रकारों ने भी शौचालय की मांग को ही झगड़े की जड़ होने की पुष्टि की है। लेकिन अब पास पड़ोस के लोग भी इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता।
आप लोगों को कुछ पता है?
नहीं भाई, हमें नहीं पता, हम बहुत दूर रहते हैं। आगे देखने वाले को तो सभी पब्लिक आई थी।
स्थानीय पत्रकार अमन जैन इसकी वजह बताते हैं,
डर भी बना हुआ है क्योंकि पुलिस के सवाल फंसा देते हैं, पुलिस के डर लगता है कि कहीं ये पुलिस मुझे बार बार ये सी सवालों में उलझा करके मेरा करियर नहीं बर्बाद करते। पुलिस से बचने के लिए कोई भी सामने नहीं आना चाह रहा।
जहां तक शौचालय की बात है तो कासिम के एक कमरे वाले घर के बाहर कुछ पर्दे लगाकर शौचालय नुमा एक कच्चा निर्माण किया गया है, लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है। पूरी बस्ती में किसी के पास भी शौचालय नहीं है। बस्ती के ही रहने वाले बबलू मियां कहते हैं।
यहाँ तो सर काफी 8-10 तो घर इसी गली में, पीछे भी गलियां हैं और भी गलियां हैं।
किसी के
टॉयलेट सरकारी है नहीं, जिसने लोगों ने फार्म भी भर रखे हैं उनके भी नहीं आए, और लोग बाग 100-200-500 रुपए तक ले भी गए यहाँ से फार्म भरने के।
और अपने से भी लोगों ने नहीं बनवा रखा है, खुद से
नहीं, अब इतना जिसके पास है उसने बनवा लिया, और जिस पे है नहीं गुंजाइश सर वो कहाँ से बनवा लेंगे।
पुलिस ने घटना के पीछे दहेज को कारण माना है और इसकी शिकायत अलीगढ़ में रहने वाले नाजरीन के घर वालों की ओर से लिखाई गई है। लेकिन स्थानीय लोग न सिर्फ इस पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि आरोप लगाते हैं कि नाजरीन के घर वाले महज 2-3 साल के दुदमुहे बच्चों को भी अपने साथ नहीं ले गए और उनके हाल पर यहीं छोड़ गए।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब समय है एक विशेष रिपोर्ट का। हैदराबाद के 11 साल के अगस्त जायसवाल ने 12वीं की परीक्षा पास कर किसी और की नहीं बल्कि अपनी बहन की रिकॉर्ड की ही बराबरी कर ली है। दोनों भाई बहन ने बिना स्कूल गए ये उपलब्धि हासिल की है। उनकी बहन नैना जायसवाल 16 साल की हैं और PhD कर रही हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
अगस्त्य और नैना के माता पिता अश्विनी कुमार और भाग्यलक्ष्मी जायसवाल एक साधारण खानदान के हैं, लेकिन उनके विचार आम लोगों से बहुत ही अलग हैं। उनका मानना है बच्चों को प्यार से और खेल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं, इसीलिए ना नैना ना अगस्त्या कभी स्कूल या कॉलेज गए हैं। दोनों बच्चों की पढ़ाई घर पर ही हुई है और उसके बावजूद अगस्त्या ने 11 साल की उम्र में इंटरमीडिएट पास कर लिए हैं और नैना पोस्ट ग्रेजुएट के बाद PhD कर रही हैं। तो ये किस तरह हुआ कि बच्चे स्कूल गए बगैर ही इतने आराम से यहाँ तक पहुँच गए? अश्विनी कुमार कहते हैं,
5 साल तक के जो सो माँ ही पहली टीचर होती है बच्चों के लिए, तो मदर ही, गांधी जी जैसा बताए थे कि मदर इज द फर्स्ट टीचर। अगर आप ट्रेनिंग बचपन से अगर करते हैं माँ की गोद के अंदर, तो वो ट्रेनिंग उसके लाइफ लॉन्ग उसको याद रह जाती है और उसको पैशन मतलब एजुकेशन में उसको मजा आना चालू हो जाता है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग पहले माँ ने किया, उसके बाद फिर मैं हैंड राइटिंग स्किल्स, मेमोरी स्किल्स और क्रिएटिविटी, मैंने बच्चों को खेलते खेलते पढ़ाई कराना और उनको पता नहीं लगना कि पढ़ाई है क्या खेल है पता नहीं लगना, और बच्चे रट के पढ़ते हैं, रट के नहीं पढ़ना, समझ के अपनी ओन लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस करें, सर का मैं उनको ट्रेन किया था सर।
अश्विनी अपना ही स्कूल चलाते थे लेकिन 2008 में वो स्कूल बंद कर दिया और अपने बच्चों पर ध्यान से घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। अश्विनी कुमार ने कहा,
बचपन में क्या होता, आजकल ट्रेंड कैसे चल रहा है, बच्चों को 2 साल होते कि स्कूल में पेरेंट्स डाल दे रहे, 3 साल होते कि स्कूल में प्ले स्कूल में वगैरह जो ज्वाइन करा रहे ना, ग्रुप टीचिंग में उतना छोटा बच्चा ग्रेस्पिंग करना, उसको पैशन क्रिएट करना इम्पॉसिबल है।
अश्विनी कुमार और भाग्यलक्ष्मी ने बच्चों को 5 साल की उम्र में सिखाना शुरू किया था। वो कहते हैं,
नैना को और अगस्या को 6 मंथ्स कंटिन्यूसली हिंदी कराए हम लोग, जिसके अंदर वो मात्रा उनका फिर आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, पूरे मात्राएं परफेक्ट करा करके उसको न्यूज़पेपर रीडिंग करना चालू करा दिया हम लोग। फिर उसके बाद 1 साल हम लोग वी वर्क फॉर कंप्लीट साइंस एंड सोशल, देन 1 ईयर वी कंप्लीटेड वर्क फॉर द मैथमेटिक्स। तो 3 साल के अंदर ये उसका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद देन वी ऑप्टेड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर SSC 10th के एग्जाम के लिए।
उन्होंने पास वाले एक स्कूल में बच्चों को दाखिला करवा दिया था और उस स्कूल के टीचर भी कभी बच्चों के साथ ग्रुप एक्टिविटी करने लग गए। लेकिन क्या बच्चे दूसरे बच्चों से मिलकर भी कुछ नहीं सीखते? इस सवाल के जवाब में अगस्त्या कहते हैं,
वैसे तो मैं प्लेफुल एटमॉस्फेयर में पढ़ता हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं होता, और मेरे फ्रेंड्स तो मुझे मिलते हैं जब मैं टेबल टेनिस खेलने जाता हूँ ना, जब मैं फ्रेंड से खेलता हूँ।
तो आपको ये बुरा नहीं लगता कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हैं, दूसरे बच्चे स्कूल वूल जाके आते हैं यूनिफॉर्म वूनिफॉर्म पहन के स्मार्ट दिखते हुए?
मैं खेलता भी हूँ, टेबल टेनिस भी खेलता हूँ, मैं ड्राइंग करता हूँ, ब्रेक में खेल लेता हूँ, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं लगता।
तो आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं? अभी तो आप क्या 12वीं क्लास तो पास हो गई, आपकी इंटरमीडिएट हो गई।
मैं बड़ा होकर BA जर्नलिज्म करूंगा और अगेन फिर बायोलॉजी लूंगा, क्योंकि मेरा एम्बिशन डॉक्टर है, क्योंकि अभी एज रिस्ट्रिक्शन है ना। एक्चुअली मैं और मेरे सिस्टर डिग्री के लिए नहीं पढ़ते हैं, पर एजुकेशन गेन करने के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं।
दरअसल अश्विनी कुमार और भाग्यलक्ष्मी के अनोखे तरीके से शिक्षा में नैना और अगस्त्या जायसवाल काफी आगे निकल गए हैं, लेकिन ये हर किसी की बस की बात नहीं लगती। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, प्रभात पांडे के साथ। जी पांडे जी,
जी पंकज जी, तमाम अखबार मेरे सामने हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स पे जो खबर छपी है उसका जिक्र करते हैं। इस हिंदुस्तान टाइम्स में जो पहले पन्ने पर खबर छपी उसके मुताबिक कश्मीर में प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सैन्य बल अब प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल करेंगे।
हाँ, पैलेट गन्स को लेकर पहले भी काफी विवाद हुए हैं।
इसी वजह से अखबार ने गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा कि कुछ हजार प्लास्टिक की गोलियां प्रयोगात्मक तौर पर कश्मीर में जो सैन्य बल तैनात हैं उनको भेज भी दी गई हैं और सेना से कहा गया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल वो एक आखिरी विकल्प के रूप में करें, उससे पहले प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल करें लोगों को काबू में करने के लिए। जैसा कि आपने देखा है कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना के जो तरीके हैं उनकी लगातार आलोचना होती रही है, उसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही द टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर छपी है उसके मुताबिक अगर एक संसदीय समिति की अनुशंसाएं लागू कर दी जाती हैं तो भविष्य में राष्ट्रपति और केंद्र और राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें अपने आधिकारिक भाषण हिंदी में ही देने होंगे। जी, लेकिन इसमें सिफारिश में ये बात है कि ये जो है सिफारिशें उन पर ही लागू होंगी, वो मंत्री जो हिंदी में लिख और पढ़ सकते हैं।
अच्छा
जी, इसके अलावा द हिंदू ने पहले पन्ने पर खबर छापी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के जो मुंबई के पास स्थित रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है एम्बे वैली, उसको नीलाम करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करके 10 दिन में उसे रिपोर्ट सौंपी जाए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अदालत के बार बार निर्देश के बावजूद सहारा समूह ने अभी तक सेबी को 5,000 करोड़ रुपये से ऊपर की जो राशि है वो जमा नहीं की है। द हिंदू में ही छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च अदालत ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने पर रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के मुताबिक श्रीनिवासन 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की जो बैठक होने वाली है उसमें बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इसके अलावा पंजाब केसरी सहित तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी छापा गया है। योगी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का वो समर्थन करते हैं और जो लोग तीन तलाक पर मौन हैं वो भी इस सामाजिक समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने तीन तलाक की तुलना द्रौपदी चीरहरण से भी की है। जी पंकज जी,
बहुत शुक्रिया प्रभात। हमारे पास समय की कमी है और अब खेल समाचार में चर्चा कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल में कल दो मैच हुए और दोनों मैच काफ़ी रोमांचक रहे। पहला मैच दिल्ली डेयर डेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 168 रन बनाए। कोलकाता ने एक गेंद रहते ये मैच जीता और उसकी इस जीत के हीरो रहे यूसुफ पठान और मनीष पांडे। पठान ने 59 और मनीष पांडे ने नाबाद 69 रन बनाए। दूसरा मैच भी बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन मेज़बान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने किंग्स इलेवन पंजाब को 5 रन से हराने में सफलता पाई। कप्तान डेविड वार्नर की 70 रनों की संयमित पारी के कारण हैदराबाद ने 20 ओवरों में 159 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम 154 रन पर आउट हो गई। पंजाब के मनन बोहरा ने 50 गेंदों पर 95 रनों की पारी खेली, लेकिन वे अपनी टीम को जिता नहीं पाए। और आज आईपीएल में गुजरात लायंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। मैच राजकोट में खेला जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में, सुनिए मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव और बढ़ गया है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका अगर उसके खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई करता है तो वो उसका जवाब परमाणु हमले से देगा। तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान को रविवार को हुए जनमत संग्रह में जीत की बधाई दी है। हालांकि अमरीका की ओर से इस पर अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। फेसबुक ने कहा है कि वो हिंसात्मक और दूसरी आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो के संबंध में अपनी नीति की समीक्षा करेगा। अमरीका के क्लीवलैंड शहर में एक वृद्ध नागरिक की हत्या को फेसबुक पर लाइव दिखाने के मामले के सामने आने के बाद फेसबुक ने ये बयान जारी किया। श्रीलंका में अधिकारियों ने बताया है कि शुक्रवार को कोलंबो में विशाल मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या 28 हो गई है और 30 लोग अब भी लापता हैं। रूसी जांच एजेंसी एफएसबी ने कहा है कि उसने सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो स्टेशन में हुए धमाके के सिलसिले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। समझा जाता है कि ये शख्स धमाके का षड्यंत्रकर्ता हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में हुए इस धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 100 घायल हो गए थे। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, पंकज प्रियदर्शी और प्रभात पांडे को अनुमति दीजिए। और इस बीच अगर आप बदलती खबरों से जुड़ना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।